नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। युवा शक्ति को बताया विकसित भारत का शिल्पकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण से संबंधित विधेयक के लिए सभी दलों से समर्थन की अपील की। पूर्वी चंपारण जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हुई। और मौसम विभाग ने कल राज्य के दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी के साथ बारिश की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति और विकसित भारत की यात्रा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री राधाकृष्णन मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने छात्रों से आह्वान किया कि वे अपने ज्ञान का उपयोग देश के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान के लिए करें। उपराष्ट्रपति ने वर्तमान युग को अमृतकाल बताते हुए कहा कि युवा ही भारत के भविष्य के मुख्य शिल्पकार हैं। उन्होंने कहा कि भारत अपनी युवा शक्ति की बदौलत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को प्राप्त करेगा।
मुझे विश्वास है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। यह सब आप युवाओं के कारण संभव है, जो यहाँ उत्साह से बैठे हैं, कुछ करना चाहते हैं और सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। मुझे यकीन है कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत सिर्फ एक सपना ही नहीं बल्कि एक हकीकत होगा।
उपराष्ट्रपति ने छात्रों को नवाचार और सेवा भावना के साथ नेतृत्व करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर स्थापित है, इसलिए विद्यार्थियों को अपने पेशेवर जीवन में सत्य, अहिंसा और आत्मनिर्भरता जैसे गांधीवादी मूल्यों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। श्री राधाकृष्णन ने बिहार को ज्ञान और विज्ञान की धरती बताते हुए कहा कि हाल के दिनों में राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में कई काम हुए हैं, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार प्रमुख है।
This is the sacred soil of Bihar, where the ancient
यह बिहार की पवित्र भूमि है, जहां प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय वैश्विक शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अमूल्य प्रयास से इस विश्वविद्यालय का पुनर्विकास संभव हुआ। हम सब उनके प्रयासों की सराहना करते हैं।
दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। समारोह में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह भी शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में शामिल होने के बाद उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पश्चिम चंपारण स्थित ऐतिहासिक भितिहरवा गांधी आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी की विरासत को नमन किया और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण से संबंधित नारी शक्ति व वंदन अधिनियम के लिए सभी दलों से समर्थन की अपील की है। श्री मोदी आज केरलम के तिरुवल्ला में एनडीए के चुनाव प्रचार अभियान के अंतर्गत एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण एनडीए की प्राथमिकता है और इसकी नीतियों से महिलाओं को सबसे अधिक लाभ हुआ है।
जो कानून हमने पारित किया है 33% महिलाओं के लिए, जैसे पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से महिला आरक्षण का बिल पास किया था, वैसे ही ये महिलाओं के अधिकार का एक कानून निर्विरोध पास होना चाहिए। और मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि मेरी माताओं बहनों का यह हक 40 साल से लटका हुआ है, अब 2029 के चुनाव में फिर से लटकना नहीं चाहिए।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सरकार देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में पेट्रोल और डीजल खरीदने तथा रसोई गैस की अनावश्यक बुकिंग से बचने की सलाह दी। मंत्रालय ने कहा कि 5 किलोग्राम के सिलेंडर नजदीकी एलपीजी वितरकों के यहाँ उपलब्ध हैं और वैध पहचान पत्र दिखाकर इन्हें खरीदा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि 5 किलोग्राम के सिलेंडर खरीदने के लिए किसी पते के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि सरकार भूमि विवाद से जुड़े मामलों को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज मुंगेर में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार ठोस कार्ययोजना के तहत काम कर रही है।
कल्याण संवाद कार्यक्रम में जमीन से जुड़ा हुआ कई समस्याओं को हम लोग सुने हैं, समाधान का निर्देश भी दिए हैं और लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े विषय को भी हमने यहाँ के एसपी से निर्देशित भी किए हैं। यह हम सब की समाज की जिम्मेवारी है, हम इसके समाधान करेंगे और माफिया राज किसी भी कीमत पर स्थापित नहीं होने देंगे।
विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने जन विश्वास विधेयक के संसद के दोनों सदनों से पारित होने पर प्रसन्नता जताई है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से व्यापार में आने वाली जटिलताओं को कम किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। सोनपुर रेल मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 1,190 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित किया। मंडल रेल प्रबंधक अमित सरन ने आज छपरा में संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी।
जो प्रदर्शन है 25-26 में वो काफी बेहतरीन रहा है। पैसेंजर सर्विसेज में भी आज तक की सबसे ज्यादा स्पेशल ट्रेन्स 25-26 में चली हैं और नॉन फेयर रेवेन्यू में अर्निंग में भी हमने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। करीब 14% वृद्धि हुई है और जो राजस्व है वो 24-25 में 90.75 करोड़ राजस्व हुआ था, उसके बदले पहली बार 100 करोड़ से ज्यादा राजस्व हमने 25-26 में प्राप्त किया, 141.16 करोड़।
सिवान जिला प्रशासन ने निजी विद्यालयों में पुनर्नामांकन शुल्क और किताबों की मनमानी कीमत पर अंकुश लगाने के लिए हेल्पलाइन की शुरुआत की है। जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि लोग इस संबंध में टेलीफोन नंबर 0615424-2099 या 2428-60 पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि तय प्रावधानों के तहत विद्यालय शुल्क में वृद्धि कर सकते हैं।
अभिभावक गण को यदि ऐसा कहीं प्रतीत होता है कि भाई 7% के नियम को ब्रेक किया जा रहा है तो वह मेरे माध्यम से अथवा सीधा प्रमंडलीय आयुक्त महोदय के कार्यालय में अत्यधिक फीस बढ़ोतरी के संबंध में शिकायत कर सकते हैं, जिसका निस्तारण 60 दिन के अंदर अवश्य अधिनियम के अनुसार किया जाना है। अधिनियम की धारा 4 के सबसेक्शन 6 में परिभाषित है कि कोई भी स्कूल पेरेंट्स को अभिभावकों को किसी पर्टिकुलर स्कूल जगह से स्कूल पुस्तक यूनिफॉर्म इत्यादि खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो इस संबंध में दिशा निर्देश परसों निर्गत हुआ है।
पटना के भारतीय नृत्य कला मंदिर में आयोजित किताब उत्सव के दूसरे दिन आज किताब चर्चा के तहत जावेद अनवर की पुस्तक सांप्रदायिकता और जातिवाद के विषयों पर चर्चा का आयोजन किया गया। पूर्व सांसद अली अनवर और आकाशवाणी समाचार पटना के उपनिदेशक अजय कुमार सहित कई वक्ताओं ने इस पुस्तक पर अपने विचार रखे। पुस्तक के लेखक जावेद अनवर ने किताब के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला। पूर्वी चंपारण जिले के तुरकोलिया और रघुनाथपुर थाना क्षेत्रों में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। अभी भी कई लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इस बीच पुलिस ने बताया कि फॉरेंसिक जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि मेथेनॉल से बनी शराब पीने के कारण लोगों की मौत हुई है। जिले में शराब माफिया के खिलाफ लगातार छापेमारी की जा रही है। मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर 2 वाहनों से 1,400 लीटर शराब बरामद की है। मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। वहीं वैशाली जिले के मानार थाना क्षेत्र अंतर्गत दियारा इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध शराब फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया। मौके पर 1,500 लीटर से अधिक शराब नष्ट की गई। दूसरी तरफ बक्सर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की टीम ने कार्गो हावड़ा कुंभ एक्सप्रेस ट्रेन से लगभग 33 लीटर शराब बरामद की है। मौसम विभाग ने कल राज्य के दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान धूल भरी आंधी चलने और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है।
दिनांक 5 अप्रैल 2026 को राज्य के दक्षिणी एवं उत्तर पश्चिम भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के जिलों औरंगाबाद, बांका, भभुआ, गया, जमुई, नवादा एवं रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान गया के शेरघाटी में सबसे अधिक 36 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं 38.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ शेखपुरा राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। कटिहार के फलका थाना में पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत से आक्रोशित लोगों ने फलका कुर्सेला स्टेट हाईवे को जाम कर प्रदर्शन किया। पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने बताया कि आरोपी युवक ने हाजत में आत्महत्या का प्रयास किया था, जिसके बाद उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि फलका थाना प्रभारी रवि कुमार राय और कांड के अनुसंधानकर्ता कुंदन पटेल को निलंबित कर दिया गया है और मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। शिवहर जिले के हिरम्मा थाना के बेलाही तुल्ला गांव में आज भीषण आग लगने से 7 घर पूरी तरह जलकर नष्ट हो गए। अगलगी की घटना में 3 मवेशियों की भी मौत हो गई। वहीं बांका जिले के रजौन प्रखंड के दुर्गापुर, बाबरचक और डुमरिया में आग लग जाने से 100 बीघा से अधिक खेत में लगी गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो गई। बांका जिले के बेलहर थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार और मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सुपौल जिले में एसएसबी की टीम ने रतनपुरा थाना क्षेत्र स्थित एक खेत से 263 किलो गांजा बरामद किया है। नालंदा जिले के बिहार थाना क्षेत्र से पुलिस ने 5 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। रोहतास जिले के सासाराम प्रखंड की प्रमुख रूपा कुमारी के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव आवश्यक समर्थन के अभाव में खारिज हो गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। युवा शक्ति को बताया विकसित भारत का शिल्पकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण से संबंधित विधेयक के लिए सभी दलों से समर्थन की अपील की। पूर्वी चंपारण जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हुई। और मौसम विभाग ने कल राज्य के दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी के साथ बारिश की जताई संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।